नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पुराने नियम में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने यहूदा वासियों को चेतावनी दे दी थी कि वे मन फिरा लें, अन्यथा दंड भोगना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप परमेश्वर ने अकाल भेजा कि वे देखकर सतर्क हो जाएं, क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता भी झूठी शांति देने के लिए आ गए थे। वे झूठी शांति दे रहे थे कि आगे को देश में समृद्धि आएगी और सब कुछ फिर से सुहावना हो जाएगा। और यह सुनकर यिर्मयाह के मन में भी संदेह उत्पन्न हुआ कि वह कहीं गलत तो नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि उसका एकमात्र संदेश वाहक वही है। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, परंतु इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो रेडियो के पास बैठकर आपके वचन में से सुनना और सीखना चाहते हैं, आप उन्हें आशीष दें, उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दें। और इतना ही नहीं, प्रत्येक के जीवन से आप बातचीत करें, अपने वचन के द्वारा उन्हें तसल्ली दें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। आप उन पर अनुग्रह करें, उन्हें अपनी शांति दें, आज के अध्ययन पर भी अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम देखेंगे शीघ्र आने वाला दंड। अध्याय 15 में हम देखते हैं कि यिर्मयाह दुखित मनुष्य है और वह अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख आना चाहता है। यह एक अति उचित बात है, परंतु परमेश्वर के पास उससे कहने के लिए एक रोचक बात है। आइए आप मेरे साथ यिर्मयाह 15 अध्याय उसके एक पद को पढ़िए। लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता, इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं। वे परमेश्वर से बहुत दूर हो गए थे और उन्हें दंड मिलना ही था। उन्होंने सीमा पार कर ली थी और अब लौट आने की संभावना नहीं थी। वे बंधुआई में जाने से बचेंगे नहीं। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि वह यह न सोचे कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। यिर्मयाह की प्रार्थना अनुचित नहीं थी। परमेश्वर कहता है कि यदि मूसा भी उसके सामने याचना करता तो वह नहीं सुनता। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय में स्पष्ट है कि मूसा एक अति उत्तम मध्यस्थ था। परमेश्वर ने इसराइल के वंशजों को नष्ट करने का प्रण कर लिया था, तब मूसा ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और तब परमेश्वर ने उन पर दया की। परंतु इस समय यदि मूसा भी इनके लिए प्रार्थना करता तो कोई लाभ ना होता। शमूएल एक और अच्छा मध्यस्थ था जिसकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से इसराइल बार बार परमेश्वर के दंड से बचा था, परंतु इस समय शमूएल की प्रार्थना हो तो भी वे दंड से नहीं बचेंगे। उन्होंने हद पार कर दी थी और दंड निश्चित था। अब हम समझ सकते हैं कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी केवल दंड की ही क्यों थी। यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरे लिए शोक करेगा? कौन तेरा कुशल पूछने को तेरी ओर मुड़ेगा? यहोवा की यह वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूं। मेरे मित्रों, लिखा है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, यह पथ भ्रष्ट होना है। मैं तरस खाते खाते उकता गया हूं, ऊब गया हूं। वे बार बार रोकर सुधर जाने की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु फिर पाप में लौट जाते हैं। परमेश्वर ऊब गया था और वह कहता है कि अब उन्हें दंड देना ही होगा। हम देखते हैं कि यिर्मयाह की अपनी निराशा है। आप देख सकते हैं कि यह संदेश यिर्मयाह को ग्रहण योग्य नहीं बनाएगा। राजा योशिय्याह तो उसका एक मित्र था, परंतु यहोयाकीम उसका मित्र नहीं है। वह तो एक दुष्ट राजा है। यिर्मयाह उसकी आंख का कांटा था। वह यिर्मयाह को उपद्रवी मानता था। परमेश्वर के इस कठोर संदेश को देने वाला एक दुखी भविष्यद्वक्ता होने के उपरांत यिर्मयाह विनोदी भी था, नम्र स्वभाव का भी था। वह परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है। यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय के 10 पद में, हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझ जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। न तो मैंने ब्याज के लिए रुपए दिए और न किसी से उधार लिए, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। यिर्मयाह कहता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है। मैं न तो ब्याज पर पैसा चलाता हूँ और न ही ब्याज पर पैसा लेता हूँ, परंतु लोग मुझे बुरा कहते हैं। एक लोकोक्ति है, यदि आप मित्रता समाप्त करना चाहते हैं तो पैसा उधार दे दें। मेरे मित्र, आप सुन रहे हैं, मैंने देखा है कि पैसा उधार देने से मसीही मित्रों के बीच क्या होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने अपने मित्र को पैसा उधार दे दिया। उसका दावा था कि वह शीघ्र ही उसे दो गुना पैसा लौटा देगा। परंतु दुर्भाग्य से वह कंगाल हो गया और अपने मित्र को पैसा लौटा नहीं पाया। उनके संबंध और मित्रता समाप्त हो गई। अतः यदि आप मित्र खोना चाहते हैं तो उन्हें पैसा उधार दे दें। यिर्मयाह कहता है कि मनुष्य ने मेरे साथ ऐसा संबंध विच्छेद कर दिया है जैसे मैंने उन्हें पैसा उधार दिया हो। इस समय यिर्मयाह परमेश्वर का वचन पढ़ता है क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक अब मिल गई थी। आइए पढ़ें यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय उसका 16 पद। लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। उसे वचन पढ़कर शांति मिली, उसने वचन को खाकर पचा लिया। आज हमें भी वचन पढ़ने की कैसी आवश्यकता है। हमें यदा कदा वचन से कुछ एक बातें नहीं देखना है, हमें वचन को पूरा का पूरा पचा लेना है कि हमारे जीवन का अंश बन जाए। वह हमारे जीवन में यिर्मयाह के समान आनंद और हर्ष भर देगा। केवल परमेश्वर का वचन ही ऐसा कर सकता है। मेरे प्रियो, जब मैं गलातियों की पत्री का अध्ययन करवा रहा था, हम सब अध्ययन कर रहे थे, तब एक श्रोता ने पिता शब्द सुना और प्रभावित होकर मुझे पत्र लिखा। मेरे कहने का अर्थ है कि परमेश्वर आज भी अपने वचन को काम में ले रहा है। ओह, परमेश्वर का वचन कैसा प्रभावी है। यिर्मयाह परेशानी में था, और आपको स्मरण रखना है कि उसका गांव उसे त्याग दिया था, उसके अपने परिवार ने उसे त्याग दिया था, उसका जीवन संकट में था। यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा, वे तुझ से लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू गोलाबारी की रेखा पर खड़ा है, मैं तुझे संभाले रहूंगा। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 15 समाप्त होता है, और अब हम अध्याय 16 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है परमेश्वर यिर्मयाह को विवाह करने से रोकता है। अब स्थिति बिगड़ती जा रही थी और यहूदा समय के अंत पर है। मेरी गणना के अनुसार उनकी बंधुआई के बस 10 वर्ष ही शेष थे। यिर्मयाह की पुस्तक 16 अध्याय उसके 1 से 4 पद में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती न पीटेगा न उनको मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर यिर्मयाह को आने वाला भय दिखाता है। वह यिर्मयाह से कहता है कि वह विवाह न करे। इसका कारण स्पष्ट है, और बंधुआई के बाद का भजन 137 इसे प्रकट करता है कि बच्चों की कैसी दुर्दशा हुई थी। अंतिम दो पदों से स्पष्ट है कि बेबीलोन भी नष्ट किया जाएगा, और वे उसके साथ ठीक वैसा ही करेंगे जैसा उसने यहूदा के साथ किया था। भजन संहिता 137 उसके 8 और 9 पद में लिखा है, हे बेबीलोन, तू जो उजाड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही वर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है, क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को जीता था, तब उसके सैनिकों ने छोटे बच्चों को पकड़कर पत्थरों पर मारकर उनका सिर फोड़ दिया था। परमेश्वर ने इसी कारण यिर्मयाह से कहा था कि वह विवाह न करे, वह नहीं चाहता था कि यिर्मयाह को अपने बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते देख हार्दिक पीड़ा हो। मेरे प्रियो, कुछ परिस्थितियों में तो अच्छा ही होता है कि बच्चे पैदा ना किए जाएं। मैं कभी कभी आज के समय को देख करके यही सोचता हूँ कि मेरा मन आज के छोटे छोटे बच्चों के लिए पसीजता है। मैं अपने ही बच्चों को देख करके रो पड़ता हूँ, उनका जीवन कैसे भयंकर समय में होगा। अतः मैं उनके लिए प्रार्थना करके परमेश्वर से उनकी रक्षा की याचना करता हूँ। इसके विषय में बहुत चर्चा की जा सकती है। एक समय ऐसा भी होगा जब बच्चे पैदा न करना ही अच्छा होगा। यहाँ प्रकाश की एक किरण है। यिर्मयाह की पुस्तक 16 अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा है, फिर यहोवा की यह वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह न कहा जाएगा, यहोवा जो इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसकी जीवन की सौगंध, वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इसराइलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। यहूदा के इस अंधकार भरे समय में परमेश्वर यिर्मयाह को ज्योतिर्मय भविष्य की झलक दिखाता है, जैसे कि अंधकार से भरे भविष्य की सुरंग के सिरे पर प्रकाश दिखाई दे रहा हो। यह बड़ी रोचक बात है कि यह विषय भविष्यद्वक्ताओं की संपूर्ण पुस्तकों में पाया जाता है। वास्तव में अंधकार उतना नहीं था, परंतु भविष्यद्वक्ताओं ने आने वाला प्रकाश नहीं देखा और रात का अंधकार जितना अधिक घना होता गया उतना ही अधिक प्रकाश चमकता गया। परमेश्वर कहता है कि वह दिन आता है जब वह उन्हें बंधुआई से लौटा लाएगा, पुनः उनके देश में अर्थात अपने देश में। यिर्मयाह की पुस्तक 16 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि परमेश्वर हमें भी सिखा रहा है कि परमेश्वर वही है, और जब वह हम पर प्रकट करेगा कि वह है तब वह एक भयानक बात होगी। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 17 से देखेंगे, जहाँ पर इसका विषय है अविवाहित भविष्यद्वक्ता का संदेश। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है, यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वह उनके हृदय रूपी पटिया और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है, उनकी वेदियां और अशेरा नामक देवियां जो हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के ऊपर हैं, वे उनके लड़कों को भी स्मरण रहती हैं, उनका हर एक काम अधर्म का था और उनके धर्म में प्रवेश कर चुका था। यिर्मयाह के पुस्तक 17 अध्याय के 5 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हमारे लिए उचित होगा कि हम इसे एक नारा बना लें तो अच्छा होगा। जी हाँ, हम कभी कभी सोचते हैं कि किसी मनुष्य पर या किसी राजनीतिक दल पर निर्भर करें कि संसार की समस्याओं का समाधान हो जाए। मनुष्य और मनुष्य के कामों पर भरोसा करें तो हम श्रापित हैं। यह परमेश्वर पर भरोसा रखने का समय है। जी हाँ, आप मनुष्य को ना निहारें परंतु परमेश्वर की ओर निहारें और निश्चय ही आप उसके द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। परमेश्वर पर भरोसा रखकर हम आशीषित होंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसके 8 पद में आगे लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यही विचार हम पहले भजन में देखते हैं। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसे हम भजन संहिता 1 उसके 2 और 3 में पढ़ते हैं। आगे लिखा है यर्मिया की पुस्तक 17 अध्याय उसके 9 पद में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मेरे मित्रों, यह आपके और मेरे मन के विषय में अति सत्य है। दुर्भाग्य से हम सबको दिल की समस्या है। यर्मिया की पुस्तक 17 अध्याय के 10 पद में आगे पढ़ते हैं, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। केवल परमेश्वर नया दिल लगा सकता है। मनुष्य तो मांस का दिल बदल रहा है, परंतु परमेश्वर आत्मिक दिल बदल देता है और लंबे समय से करता आ रहा है। जब हम उसे ग्रहण करते हैं तब वह हमें नया जीवन देता है, हमारा नया जन्म होता है और हमें नया स्वभाव प्राप्त होता है। हम प्रचारक प्रायः कहते हैं, प्रभु को अपना दिल दे दो। परमेश्वर हमारे पुराने और गंदे और अशुद्ध दिल का क्या करेगा? उसे नहीं चाहिए। मन तो धोखा देने वाला है। परमेश्वर हमें नया दिल देना चाहता है। वह हृदय विशेषज्ञ है, एक महान डॉक्टर है। जी हाँ, जब हम उसके पास आते हैं तो वह हमें धोकर शुद्ध करता है और नया हृदय, नया जीवन, नया स्वभाव दे देता है। अब यह अध्याय एक महान पद के साथ पूरा होता है। यर्मिया की पुस्तक 17 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। यह मनुष्य की आशा है। सबके हृदय गंदे, अशुद्ध और अपवित्र होते हैं, परंतु एक पवित्र स्थान है, हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। ऐसा पवित्र स्थान जो केवल आराधना स्थल नहीं है, वह सुरक्षा का और शांति का स्थान है। परमेश्वर इसराइल में सुरक्षा के लिए शरण नगर बनवाए थे। मेरे मित्रों, ये कठिन समय है। हमारी सड़कें चलने के लिए सुरक्षित नहीं है। घरों में भी हम बम से सुरक्षित नहीं है। हम सुरक्षा के लिए कहाँ जाएं? एक पवित्र स्थान है, हमारे परमेश्वर का सिंहासन। वह एक शरण स्थान है जहां हम जा सकते हैं और वह हमें बुलाता है। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 19 से 22 पद में लिखा है, हे भाइयों, जब हमें ईश्वर के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। मेरे प्रियो, यह क्या है सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, उस सिंहासन पर हम शरण ले सकते हैं, और यह सब कुछ सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा हो सकता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि आज की इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आपने यर्मिया के जीवन से सीखा है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई तुझको देन पुत्र की है दीनी सर्वदा भंडार से जो देन पुत्र की है दीनी सर्वदा भंडार से जो पिता त्री एक स्वामी आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको को तू मिटाने आया, पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया, तू है सच्चा मुक्तिदाता आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चा